हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 48। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्विवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। शब्दों का अर्थ देखिए, सहजम यानी एक साथ उत्पन्न, यानी जो स्वभाव के जो कर्म है आपके, कर्म यानी कार्य, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदोषम दोषयुक्त, अपि यद्यपि, न त्यजेत नहीं त्यागने चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर पुकारते हैं कि देखो कुंती पुत्र, जो स्वाभाविक स्वभावजनक जो तुम्हारे कार्य हैं, यदि उनमें कोई अपराध भी दिखता है तो उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं सर्व आरंभा, सर्व मतलब सारे, उद्योग मतलब स्टार्ट, यानी कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं उसमें ही यानी निश्चय ही दोषेण दोष से, मतलब कोई भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई नेगेटिव पहलू होता है, तो जो कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है। कैसे, धूमेना, धूमेना कहते हैं धुएं को, अग्नि मतलब आग में, जैसे आग में धुआं होता है, और उसी प्रकार हर कर्म में कोई ना कोई दोष होता है। धूमेना अग्नि इवा, इवा मतलब सदृश आवृता ढका हुआ। तात्पर्य देखिए, सॉरी अनुवाद देखिए, भगवान कह रहे हैं प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास में किसी न किसी दोष से आवृत होता, यानी कि हर कार्य में कोई ना कोई बुराई होती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है, जैसे अग्नि में धुआं होता है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता मात की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता की जय। अभी हमें भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय के लगभग अंत में हमें क्या भगवान बता रहे हैं। पहले कर्मयोग, कर्मयोग भगवान ने कब से स्टार्ट किया बताना। भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो सारे जितने भी वर्ण हैं उनके कर्मों के विषय में बताया कि ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का और शूद्र का क्या क्या कर्म होता है। उसके बाद श्लोक नंबर 45 में भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते परम् स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब तुम उसे सुनो कि यह किस प्रकार से होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर आप अपना ही कार्य खाली करते रहो तो भी आप सिद्धि को प्राप्त होगे। वो कैसे होगे तो भगवान श्री कृष्ण 46 में बताते हैं। बहुत ही सुंदर और सार रूपी श्लोक है। भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां जिससे समस्त प्राणियों का उद्भूत हुआ है येन सर्वम् इदं ततम् जो सारी भौतिक जितने भी जगत है उनकी पालना कर रहे हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च स्वकर्मणा अपना कार्य करो तम माने उसकी किसकी जिसने सब कुछ पैदा किया है जो सबका सब सुरक्षा बनाए रखा है जिसने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। तमभ्यर्च उसकी आराधना करो सिद्धि विन्दति मानव इससे सिद्धि प्राप्त कर सकता है मनुष्य। और आगे भगवान श्री कृष्ण इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि देखो अब तुम अगर करोगे ना सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी उसकी भक्ति भी करोगे तो भी स्वकर्मणा बोला ना 46 में भगवान ने कहा स्वकर्मा। स्वकर्मा मतलब जैसा तुम्हारा स्वभाव है गुणों और स्वभाव के अनुसार जिस भी वर्ण में आप हो उसके अनुसार ही भक्ति करनी है। अलग तरीका नहीं बनाना है कि अगर ब्राह्मण नहीं हो तुम क्षत्रिय हो फिर भी ब्राह्मण का कार्य करना शुरू कर दो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के हिसाब से ही अपना कार्य करो और भगवान की भक्ति करो। यानी कि भक्ति करना जरूरी है लेकिन आपको अपना वर्ण चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को भगवान ने आगे कहा 47 में, भगवान कहा श्रेयां सधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति पर कार्य को करना चाहिए, यानी कि आपको जैसा आपका स्वभाव है उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परधर्मान अगर वो आप अपना स्वभाव से किया हुआ कार्य अगर वो आप कम्प्लीटली अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, उसमें अगर कोई अवगुण भी है तो भी करो, क्योंकि अगर आप दूसरे का कार्य करते हो वो भले सही तरीके से भी करते हो लेकिन आपका स्वभाव जो है वो आपको मजबूर कर देता है उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए। इसलिए अगर कोई क्षत्रिय भीख मांगने जाता है, ब्राह्मण की तरह भिक्षा अटन करने जाएगा तो उसका स्वभाव ही नहीं है वो, तो वो क्या करेगा, वो चाहते हुए भी उसको सही तरह से अगर कोई मना करेगा नहीं बोले तो निकालेगा हथियार के, भाई क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो इस तरह से क्योंकि अपना स्वभाव अपना नेचर आप नहीं चेंज कर सकते लेकिन आपको सिद्धि कैसे करनी है उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करना है और भगवान की भक्ति करनी है। ये होता है स्वभाव, स्वभाव से कार्य करना। और भगवान कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म, आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे तो कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् आप कभी भी अपराध को प्राप्त नहीं होगी, यानी कि इससे आपको पाप से प्रभावित नहीं होंगे। तो आगे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम कर्म योग पढ़ रहे हैं तो कर्म योग के जरिए भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब हम ये पहला स्टेज है क्योंकि हमारी अभी अपने कर्मों में आसक्ति है, जब कर्मों से आसक्ति निकल जाएगी तो आगे भगवान श्री कृष्ण संन्यास के विषय में बताएंगे, ज्ञान योग के विषय में भी बताएंगे, लेकिन अभी भगवान पहले स्टेज जिसमें हम सब है ना उसके विषय में भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करना है तुम्हें, त्यागना नहीं है। और भगवान कहते हैं 48 में आज श्लोक में भगवान कहते हैं सहजम कर्म कांतेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय, जो तुम्हारा सहज कर्म है जो तुम्हारा स्वभाव कर्म है सदोषम अपि न त्यजेत्, उसमें भले कितने ही अपराध हो रहे हो अपराधों से युक्त हो तो भी आप उसको ना त्यागो, वो आपको करो। क्यों? क्योंकि अब आप क्यों कर रहे हो कार्य, कार्य करते हुए भगवान के साथ संबंध भी तो जोड़ने के लिए बोला ना, पहले संबंध जुड़ा हुआ है तो आप अपने स्वभाव के कर्मों को त्यागो नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये त्याग के जब दूसरा कार्य करोगे ना तो उसमें भी कोई ना कोई दोष होगा, सर्वारंभा ही दोष है, यानी कि हर टाइप के कर्म में कोई ना कोई दोष होता है। जिस तरह क्षत्रिय कार्य करता है तो क्षत्रिय के कार्य में क्या दोष होता है कि उसे हत्या करनी पड़ती है और ना हिंसा करनी पड़ती, उसी तरह ब्राह्मण जब कार्य कर रहा होता है तो ब्राह्मण को भी यज्ञ में अक्सर पशु बलि देनी होती है और इस तरह कार्य होता है। तो और जिस तरह से भगवान बहुत अच्छी मिसाल देते हैं, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि जब हम जलाते हैं, अग्नि को क्या बोलते हैं, यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यज्ञोमय विष्णु, यानी विष्णु का मुख है ये अग्नि, उसके जरिए से क्या होता है विष्णु प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप जब अग्नि जलाते हैं तो उसके साथ साथ धुआं होना स्वाभाविक है, धुआं होगा, लेकिन यदि ब्राह्मण ये सोचे कि भाई नहीं अग्नि नहीं जलाऊंगा वरना तो धुआं होगा सब खांसी आएगी, और वो अग्नि को पवित्र माना जाता है लेकिन धुओं को पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन धुओं से ढकी हुई अग्नि भी पवित्र ही मानी जाती है। उसी तरह से यदि हमारे अपने कार्य जो स्वभावजनक कार्य है कोई भी आप वर्ण के हो, अगर ब्राह्मण हो तो उसमें भी कोई आपको दोष नजर आएंगे, क्षत्रिय हो तो भी, अवैश्य है उसको व्यापार में जैसे हमने कल पढ़ा कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ता है या इस तरह, और इस तरह से हर कार्य में कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन भगवान कहते हैं सदोषम अपि न त्यजेत्, आपको अपना कार्य करना ही है उसमें भले थोड़े बहुत दोष भी होते हैं तो भी आपको कार्य नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले तो कार्य जब तक ये कर्म योग नहीं है तब खाली कर्म है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कर्म योग के विषय में, तो हमारा कर्म जो है वो तो हम शरीर के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य आप करते हो शरीर के लिए कर रहे हो, ये पूरी तरह से भौतिक होता है, भौतिक होता है तो फिर अपराध आपको टच करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आप सिर्फ खाना भी खा रहे हो, यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व कुलभूषः भुंजते ते त्वगम पापम, ये पचन्ति आत्मकारः। अगर आप कर्म करते हुए खाली खाना भी खा रहे हो तो भी भुंजते ते त्वगम पापम, आप घोर अपराध कर रहे हो। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सदृश्यम अपि न त्यजेत, क्योंकि और पहले भगवान ने कह दिया कि कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, आपको अपराध लगेगा ही नहीं। पहले भगवान ने कहा कि यदि आप खाली अपने इंद्रियों के लिए खाना भी बनाओगे तो भी आपको अपराध लगेगा, और आज कह रहे हैं कि यदि आपके कर्म में कितना ही दोष है तो भी आपको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप कर्म योग है ना। तो उसमें क्या होता है, इस ये पहले कर्म किस तरह हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है तो भौतिक है, तो इसको आध्यात्मिक कैसे बनाना है, अपने कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति मिश्रित, भगवान की भक्ति को एड कर दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अभी हम पिछले में बताया ना, यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणातमभ्यच्च सिद्धिं विन्दति, ये भगवान हमें बता रहे हैं कि अपने कार्य करते हुए यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। वो कैसे होता है भगवान ने बताया कि अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये बता रहे हैं कि अपने कर्म के साथ साथ भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, तो फिर इसके द्वारा हम भगवान के करीब जाते हैं, भगवान के और करीब जाते हैं। फिर सिर्फ क्योंकि खाली अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे ना तो भौतिक स्तर पर, तो फिर भौतिक चेतना ही हमारी बनी रहेगी, तो फिर वो हमें भगवान के करीब नहीं लेकर जाएगी। लेकिन साथ साथ में जब हम अपने भक्ति के लिए समय निकालते हैं, साधना करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इसलिए भक्ति के लिए जब समय निकालते हैं तो हमारा हृदय भगवान से संबंधित हो जाता है, और जब हमारा हृदय भगवान से संबंधित हो जाता है तो फिर हम जो कार्य करते हैं ना वो भी भगवान से संबंधित हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जो ये कर्तव्य मैं कर रहा हूँ वो मुझे भगवान ने दिए हैं, और भगवान ने जो ये कर्तव्य दिए हैं, अब मुझे जिस जगह पर भगवान ने उत्पन्न किया उसके हिसाब से मेरे कर्तव्य है, तो मैं ये सारे कार्य क्यों कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ भगवान की सेवा, उसने ऐड कर दी, भगवान को ऐड कर दिया, तो भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। अगर आप अपने हर कार्य को यज्ञ समझकर करते हो, यज्ञ शिष्टाचार संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, अगर आप भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हो तो आप सारे कर्मों के जितने भी दुष्परिणाम होते हैं उससे रहित हो जाते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, शरीर तृप्ति नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, शरीर को के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कार्य कर रहे हो क्योंकि मैं भगवान को खुश करना चाहता हूँ। अब भगवान ने मुझे ये रोल दिया है, जैसे भगवान, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, वर्ल्ड इज स्टेज, कृष्णा इज डायरेक्टर, वी आर ऑल कैरेक्टर्स। अब जिसको जो जो कैरेक्टर मिला है अगर वो अच्छे से रोल नहीं करेगा तो फिर डायरेक्टर बोलेगा ना कि आपने तो अच्छा ही नहीं किया, आपको तो अभी मैं इस प्ले में लूंगा नहीं, कोई गंदा प्ले होगा ना, कॉकरोच वाला, उसमें डाल दूंगा आपको, कुत्ते वाले में डाल दूंगा, मनुष्य वाले में नहीं डालूंगा। तो जो जो आपको कार्य दिए गए हैं, जो जो रोल दिया है उसको एकदम अच्छे से करना है, लेकिन कॉन्शियसनेस अपनी कहाँ पर रखनी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी कि आप यदि कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हो तो उसमें कितने भी दोष हैं तो आपको उसका दोष नहीं लगता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से आपको तात्पर्य हम सबको सुनाएंगे, तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई दुष्परिणाम होते हैं उसके, यहाँ तक के ब्राह्मण तक के को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो उसे शत्रुओं को से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो भी आपको कुछ न कुछ उसमें आपके कार्य में कोई ना कोई अपराध होता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। अब क्षत्रिय बोले कि नहीं मैं खून नहीं करूंगा, या ब्राह्मण बोले नहीं भाई मैं बलि नहीं दूंगा, या वैश्य बोले कि नहीं भाई व्यापार करने में मुझे झूठ बोलना पड़ता तो मैं नहीं करूंगा, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इनसे बचा ही नहीं जा सकता, आपको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप शूद्र हैं, यानी कि सेवा कर रहे हैं, तो कोई सेवा जिसकी कर रहे हैं तो वो मालिक जो है वो उससे गलत कार्य करता है, कि जैसे मेरे लिए शराब के पैक बनाओ या फिर कोई भी इस तरह के जो भी मतलब खराब कार्य हो, वो भी उसको नौकर है उसका तो उसको करना पड़ता है, उसके लिए मांस बनाना पड़ता है या इस तरह के कार्य। लेकिन अब वो क्योंकि सेवा है उसकी, वो नौकर है, उसको रोल मिला है शूद्र का, वो कार्य करना है उसको, तो उससे वो कार्य करना पड़ता है। यानी श्री प्रभुपाद जी बता रहे तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। फिर भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने कार्य करने चाहिए और साथ साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है फिर दोष खत्म हो जाते हैं, फिर भगवान खुद ही हमें ऐसा चांस ही नहीं देते कि हमें अपराध करना पड़ता है। यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण दिया जाता है, यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती है, अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। यानी कि अगर कोई सोचे कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के दूसरा करूंगा तो दूसरे में भी ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई अपराध करना ही नहीं पड़ेगा। अब इस संसार में क्या है, हर कार्य में कोई ना कोई दोष, नेगेटिव पॉइंट तो होंगे हर चीज में, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये मत सोचना कि मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ के अगर ब्राह्मण बन जाऊंगा तो मुझे कोई भी ऐसा अरुचिकर कार्य नहीं करना पड़ेगा। अतएव कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। अब संसार में जितने भी लोग हैं तो प्रकृति की आलूदगी, प्रकृति के जो अपराध कलमश है वो हर किसी को ग्रस्त करते हैं। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत ही उपयुक्त है। यदि जोड़ के दोनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर को अत्यंत ही अन्य भाग, क्षमा कीजिए, यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि जाड़े के दिनों में, यानी कि अगर सर्दी के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, अग्नि जलाता है और कोयले निकाल रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है आंखों में धुआं आता है और शरीर में भी हमें दुख, मतलब शरीर के दूसरे अंगों में भी दुख होता है, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अग्नि अब आईनों से जलाएंगे नहीं, धुआं हो रहा है या फिर ये जलन हो रही, अग्नि तो जलानी पड़ती है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्यागनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, यानी कि अपनी जो सहज वृत्ति है, अपना जो वर्ण आश्रम का धर्म पालन करना है वो नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प करें। यानी कि इस तरह से आपके जितने भी अपराध हैं वो क्षय होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इतने पवित्र हो जाओगे कि वो धुआं खत्म हो जाएगा, सिर्फ अग्नि साफ सुथरी अग्नि रहेगी। तो ये प्रभुपाद जी सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर, कि अपने कार्यों के साथ साथ यदि आप भगवान की भक्ति करते हो तो अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प करें। यही सिद्ध अवस्था है, यह परफेक्शन है। और जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, मुच्यन्ते सर्व किलबिषम। अगर हम भगवान की सेवा उस कार्य के जरिए करते हैं, क्षत्रिय ये सोचकर कर रहा है कि यदि मैं अधर्म का नाश करूंगा तो किस तरह मैं भगवान की सेवा करूंगा, ब्राह्मण ये सोचकर कार्य कर रहा है कि यदि मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और शूद्र यदि ये कह रहा है कि व्यापार में जो लाभ होगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो उसके जितने भी दोष हैं वो सब नाश हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की विधि बता रहे हैं कि जब भक्ति से संबंध कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं। अब क्या आपके कर्म जो है वो पहले तो दूषित है क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, लेकिन जब वो कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं, भक्ति से संबंधित हो जाते हैं, तो सारे अशुद्ध कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान से संबंध स्थापित हो गया इसलिए। और भगवान अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम भले जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अपराध होगा, लेकिन क्योंकि भक्ति कार्य करते 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 हृदय शुद्ध हो गया तो फिर उस कार्य में कोई अपराध, क्योंकि गलत हृदय से गलत भावना जो होती है वो हमें अपराध करने पर प्रेरित कर रही होती है। लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है तो फिर हम कार्य क्यों करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, अंतर का दर्शन कर सकता है मतलब अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और ये होता है आत्म साक्षात्कार, यानी कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, तो कृष्ण ने जो जो ड्यूटीज मुझे दी हैं वो मुझे पूरी करनी है और साथ साथ में मुझे भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करना है ताकि जो भी अपराध है, जो भी मेरे कलमश है वो सब दूर हो जाए। प्रेम से कहना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, और चित्त का दर्पण जब मार्जन हो जाएगा तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें भगवान ने कर्म योग बताया और इसके बाद अब हमें भगवान ज्ञान योग बताएंगे, तो कृपया साथ रहिएगा। हरि बोल।